विशेष प्रसंगवश शेठ सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठी भगवान जो हो गए हैं उनके कथानक को श्रवण करेंगे। तो आप जानिएगा एक प्राचीन सत्य कथानक जिसमें एक ग्वाला एक महामुनिराज की सेवा करके और साथ ही से पुण्य का संचय करता है। आजकल की ही भीषण ठंडी में एक मुनिराज जंगल में ध्यान लीन है, तो अब उनके बारे में चलते हैं, देखिएगा क्या होता है। मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज नग्न दिगंबर मुनि बैठे एक जंगल में शांत मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज गगन गमन रिद्धि धारी एक मुनिवर धरा पे आए चंपापुरी नगरी के बाहर मन में ध्यान लगाए कठिन तपस्या करते थे वे बनने को जिन राज मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज 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 आत्म ध्यानी मुनिराज भीषण सर्दी में वे ध्यान लगा करके बैठे थे जब मानव घर में भी बैठ करके थर थर कपते थे ऐसे गुरु ही कहलाते सब मुनियों के नाथ मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज 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 आत्म ध्यानी मुनिराज। बंधुओं वे मुनिवर ध्यान में लीन थे और उधर से एक ग्वाला शाम को सेठ जी की गाय चरा करके और वापस आ रहा था। रास्ते के जंगल में वे नग्न दिगंबर महात्मा मुनि को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। कैसे में जब लोग तमाम कपड़े पहनते हैं और घर में दुबक करके बैठते हैं ऐसे में नग्न दिगंबर मुनिराज बिल्कुल खुले आकाश के मध्य कैसे बैठे हैं, ये क्या करेंगे। तो समझ जाता है कि ये कोई महान संत हैं और जब पास में भी गया तो देखता है कि वे तो ध्यान में लीन है। तब उसके मन में क्या होता है, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन जब वो जंगल से घर गाय लाने गया बहुत ठंडी के दिन देखा मुनिवर नगन तब वो गुरु सेवा का मन बनाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन एक दिन ग्वाल गाय चराने गया शाम को सेठ के घर पहुंचाने गया मार्ग में देख मुनि गीत गाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन देखा बर्फीली सर्दी में भी वे मुनि लीन थे तप में वे श्री दिगंबर मुनि ग्वाला आंखों से आंसू बहाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन उसने सोचा गुरु की मैं सेवा करूं कुछ तो सर्दी भगाने की कोशिश करूं सूखे पत्ते ला उनको जलाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन रात भर गुरु की सेवा वो करता रहा अग्नि से मुनि का तन गर्म करता रहा सेवा से मन को पावन बनाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन भोर में मुनि ने ध्यान समापन किया ग्वाले को दे महामंत्र पावन किया वर्ण मोकार की धुन लगाने लगा ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन। आप समझ गए क्यों अनजान में ही समझ जाता है कि महात्मा जी ध्यान में लीन है और मुझे इनकी सेवा कुछ करनी चाहिए। सूखे पत्तों को जला करके महाराज के नजदीक नजदीक थोड़ा गर्मी पहुंचाने लगा और पूरी रात ध्यान करने के बाद जब मुनिराज आंख खोलते हैं प्रातः, तब देखते हैं ग्वाला मेरी सेवा कर रहा है। ग्वाले ने नमन किया मुनिराज को। मुनिराज ने उसको महामंत्र नमोकार का एक पद दिया। बोले, वत्स तुम नमो अरिहंताणम, इसको जपा करो और तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा जी उधर चले गए और ये ग्वाला भी सेठ जी के घर आ गया और अपना नित्य का कार्य करने लगा और नमोकार महामंत्र की एक लाइन को रटने लगा, नमो अरिहंताणम। फिर क्या होता है, ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुने लो, एक ग्वाले की सुने लो, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुने लो, एक ग्वाले की सुने लो, वह तो चंपापुर का वासी था। चंपापुर में वह सुभग नाम का ग्वाला था जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था, रोज गायों को चराता था और उसने मुनिराज से नमो अरिहंताणम मंत्र पाया। देकर मंत्र सुभग ग्वाले को मुनिवर चली गई आगे को, हर दिन रटता था वह मंत्र नामो अरिहंताणम, नामो अरिहंताणम, वह तो चंपापुर का वासी था। पूछा मालिक सेठ ने उससे, तुझको मंत्र दिया यह किसने। ग्वाले ने बतलाई बात, गुरु सेवा में बिताई रात, गुरु सेवा में बिताई रात, वह तो चंपापुर का वासी था। तो ग्वाले ने सेठ जी के पूछने पर बताया कि सेठ जी, आज हमने रात भर एक संत की सेवा की और उन्होंने ये मंत्र बताया। सेठ जी तो उस मंत्र को पढ़ते ही थे, वे जैन श्रावक थे, उन्होंने बड़ी खुशी व्यक्त की, बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तब क्या करते हैं, सेठ ने ग्वाले को गले लगाया, उसको महल के पास बुलाया, दे दिया उसको नया मकान, बोले कर ले धर्म ध्यान, बोले कर ले धर्म ध्यान, वह तो चंपापुर का वासी था। एक दिवस एक घटना घट गई, ग्वाले की अचानक मृत्यु हो गई, मंत्र को पढ़ते छोड़े प्राण बन गया, सेठ का पुत्र महान बन गया, सेठ का पुत्र महान, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुने लो, एक ग्वाले की सुने लो, वह तो चंपापुर का वासी था। वह सेठ वृषभदास जिसकी धर्म पत्नी का नाम था जिनमती और मर करके वह ग्वाला जिनमती सेठानी के घर में आ जाता है। श्रेष्ठी वृषभदास की पत्नी वह जिनमती थी धर्म की जननी, उसने सुपने देखी पांच पाया, पुत्र सुदर्शन राज पाया, पुत्र सुदर्शन राज, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुभग ग्वाले की सुने लो, एक ग्वाले की सुने लो, वह तो चंपापुर का वासी था। बहुत सुंदर कथानक है, एक छोटी सी पुस्तक पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने लिखी है भक्ति, शील धुरंधर शेर सुदर्शन के, उसमें कथा है, रक्षा बंधन की कथा है और भी एक दो कथाएं हैं, उनमें से ही मैंने लिया और संक्षेप में ये कथानक आप सुन रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस सेठ के घर में सुभग वाला गाय चराने का काम करता था, उन्हीं सेठ की पत्नी सेठानी जिनमती के घर में ग्वाले का जीव आ गया और 9 महीने के बाद जन्म लेने के बाद उसका नाम रखा गया सुदर्शन सेठ। यानी उन्होंने जो 5 सपने देखे थे उनमें पहला सपना था सुदर्शन, बस वो नाम उन्हें बड़ा अच्छा लगा, सुदर्शन पर्वत को उन्होंने देखा तो नाम रख दिया पुत्र का सुदर्शन। यानी अब वो पुण्यवान श्रावक सुदर्शन सेठ बन जाता है श्रेष्ठी पुत्र और उसके जन्म लेते ही सेठ की संपत्ति खूब दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त करने तक उसके गुण रूप सौंदर्य की खूब प्रशंसा पूरी चंपापुर शहर में होने लग गई। जब वह युवा हुआ तो युवावस्था में सुदर्शन का विवाह वहीं के एक श्रावक की पुत्री मनोरमा के साथ वृषभदास जी कर देते हैं। पुनः आगे की कथा सुनिएगा। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, हो रही सेठ सुदर्शन जी की उनके सील व सुंदर तन की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी। यानी सारा कथानक अभी चंपापुर नगरी का चल रहा है, जो आज भी बिहार प्रांत के अंदर चंपापुरी नगरी है। भगवान वासुपूज्य के पांचों कल्याणक से पवित्र नगरी है और चंपापुर के अंदर भगवान वासुपूज्य की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा भी हमारे विनोद जी सेठी जी ने विराजमान की है और स्वामी जी ने उसका बहुत सुंदर पंच कल्याणक कराया था। वही चंपापुर नगरी वहां पर चतुर्थ काल के अंदर ये घटना घटित होती है। वह बालक सुदर्शन है सुंदर बड़ा, वह बालक सुदर्शन है सुंदर बड़ा, सेठ का पुत्र वह लाडला है बड़ा, सेठ का पुत्र वह लाडला है बड़ा, बालक किलकारी भरता है सबको हर्षित वह करता है, खुशियों की वर्षा करता है, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। दूजी के चांद सम वह तो बढ़ने लगा, फिर युवावस्था में पग को धरने लगा, माता पिता ने ब्याह रचाया मनोरमा को बहु बनाया, पुत्र सुदर्शन भी हर्षाया, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया, फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया, मानो उनको नजर लगी है घटना अनहोनी सी घटी है, एक नारी ने कथा गढ़ी है, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुरी नगरी के धात्री वाहन राजा उनकी रानी अभयमती का षड्यंत्र था, ध्यान मगन थे सेठ सुदर्शन एक शमशान भूमि के अंदर, त्याग का मन में भरा समंदर, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। फूल के साथ जैसे कांटा लगा होता है तो महापुरुषों के जीवन के अंदर फूल जैसी सुगंधी भी रहती है और कांटे जैसे दुख परिचय आकर के परीक्षा की भी घड़ियां आती हैं। ऐसी सेठ सुदर्शन के जीवन में भी एक अनहोनी घटना घटती है। सेठ सुदर्शन रूप से बड़े सुंदर थे और वो एक बार अपनी रानी के साथ नगर की शोभा देख रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो उसी नगर का राजा जो धात्री वाहन था उसकी रानी अहमती थी, उसको उसने जब सुदर्शन को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गई और उसने कहा यदि सुदर्शन हमको नहीं मिला तो मेरा जीवन ही बेकार है। तब उसने षड्यंत्र रचा और उसने अपनी धाय माँ से कहा कि इसको किसी तरह बस में करना चाहिए। उनसे पूछा गया, आपको रानी ने याद किया है? रानी ने बहुत प्रयास किया तो सुदर्शन के मुख से निकला कि आप जो मन के अंदर सोच रही हैं तो वो मेरे से कार्य सिद्ध नहीं होगा। यानी उन्होंने अपने सील की रक्षा करने के लिए, अपने को एक क्षण के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं नपुंसक हूं। और इतना कहने के बाद फिर रानी चुप हो गई। लेकिन एक बार जब उसने सुन लिया कि सेठ सुदर्शन के पास सुंदर पुत्र भी है, तो उसने सोचा कि मेरे साथ छल कर रहा है, मैं इस नगर की रानी हूं और मुझे प्राप्त करने के लिए इसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे ठुकरा रहा है। तब उसने बहुत ही षड्यंत्र रच करके अपनी धार से पता किया कि सेठ सुदर्शन कब जाते हैं शमशान में ध्यान करने के लिए, और उसने सेठ सुदर्शन को अपने षड्यंत्र से धार के द्वारा महल में रात में बुलवा लिया, यानी उठवा लिया। धाए से उनको उठवा लिया रात्रि में, धाए से उनको उठवा लिया रात्रि में, फिर मनाने लगी विषय सुख के लिए, फिर मनाने लगी विषय सुख के लिए। सील सुदंत सील धुरंधर नहीं डिगा, जब रानी ने ही शोर किया तब बोली व्यभिचारी है ये नर चंपापुरी में। जय जयकारो है सेठ सुदर्शन जी की चंपापुरी में, जय जयकार हो रे सेठ सुदर्शन जी की।
रात भर उसने प्रयास किया कि सुदर्शन किसी तरह मेरी कब्जे में आ जाए, लेकिन जब वो नहीं आया, सवेरा होने को था और महल में शोर मच जाता, तब रानी ने ही शोर मचा दिया कि रात में मेरे घर के अंदर एक पुरुष घुस करके आया है और मेरे सील को भंग करना चाहता है। तो राजा के पास तक के समाचार पहुंचता है।
राजा भी रानी की बातों में आ गया, राजा भी रानी की बातों में आ गया, फिर सुदर्शन को सूली का दंड दे दिया, फिर सुदर्शन को सूली का दंड दे दिया। जल्लादों की उठी तलवारें, फूल की माला बन गई सारी, देवों ने महिमा दिखला दी चंपापुरी में। जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की चंपापुरी में, जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की।
प्रिय बंधुओं, ये है सेठ सुदर्शन के शील की महिमा। अर्थात राजा जब रानी के कहने में आ जाता है तो सच समझ लेता है कि इस पुरुष ने आकर और मेरी रानी के साथ व्यभिचार करने का प्रयत्न किया। तुरंत ही उन्होंने जल्लादों से उन्हें मारने के लिए आज्ञा दे दी और जल्लादों ने तलवारें उसके सेठ सुदर्शन की गर्दन पर चलाई। लेकिन ये क्या भारी चमत्कार, तुरंत उस वन के देवता ने आकर के जैसे उनका आसन कंपायमान हुआ, अधिक ज्ञान से देवों ने जान लिया कि एक सील धुरंधर के ऊपर ये उपसर्ग आया है। तुरंत आकर के उन्होंने चमत्कार दिखाया और सुदर्शन के गले में तलवार की जगह फूल की माला पड़ गई और जल्लादों को देवताओं ने कीलित कर दिया। ये चमत्कार था, सील का चमत्कार था। सारे चंपापुर नगर में ये खबर दौड़ गई। राजा धात्रीवाहन भी वहां आ गए। वन देवता ने उनको अपने दिव्य ज्ञान से सारी जानी हुई बातें बता दी कि राजन, आपकी रानी ने ही इसके साथ षड्यंत्र किया और अपना स्वार्थ सिद्ध ना होने पर उसने सुदर्शन सेठ को झूठा दोष लगाया है। राजन, आपने इस निर्दोष को इतना कठोर दंड दिया है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने आया हूं, ऐसा वन देवता ने घोषणा की। राजा को सच्ची बात पता चल जाती है, तब एकदम लज्जित होते हैं क्योंकि अपनी ही रानी का मामला था। तो उन्होंने सुदर्शन से क्षमा मांगी, किंतु सेठ सुदर्शन को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार की अस्थिरता, संसार की नश्वरता का चिंतन करते हैं और वे जिन मंदिर में जाकर मुनिराज विमल वाहन से जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए याचना करते हैं। उनकी धर्मपत्नी ने बहुत समझाया कि यह तो संसार के अंदर न जाने क्या चलता है, सज्जन और दुर्जन सब तरह के लोग होते हैं। प्रियवर आप मुझे इसका दंड क्यों दे रहे हैं? लेकिन सुदर्शन को तो असली वैराग्य हो गया था। जिसको वास्तविक वैराग्य हो जाए उसको कभी भी राग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आप इस कथानक को आधे कथानक को कल पुनः सुनेंगे और कल पर शुक्ला पंचमी के दिन इन मुनिराज सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठी को सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों में वर्णन आया है, इसलिए पूज्य माताजी ने बताया हमें। और कल पौष शुक्ला पंचमी है तो उनका निर्वाण दिवस मना करके हम लोग निर्वाण लाडू भी चढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। आप भी उसमें सम्मिलित होइए। सेठ सुदर्शन की पूजा भी पूज्य माताजी के आदेश पर मैंने बनाई। वह पूजन आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई है। अष्ट द्रव्य लगाना, एक हो सके तो छोटा लड्डू भी बना लेना और टीवी के सामने बैठ जाना। हम सबके साथ आप ही सेठ सुदर्शन की पूजा करना, उनका शील व्रत अपने जीवन में पालन करने की इच्छा करना। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, यदि उनके जीवन के अंदर शील व्रत है तो निश्चित रूप से चमत्कार होता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे सेठ सुदर्शन के स्मरण का दिवस आया है, इसलिए आप सब भी उनका स्मरण करते हुए और भगवान सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करना सुदर्शन जी की। और जब भी पटना जाएं तो आप गुलजार बाग कमल दह स्थान है जहां माना जाता है ये सिद्ध सुदर्शन की सिद्ध स्थली मोक्ष स्थली है। वहां से भी हम डायरेक्ट आपको वहां के विराजमान भगवान का दर्शन कराएंगे और आप सब भगवान सुदर्शन देव सिद्ध परमेष्ठी भगवान की पूजा करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाना। तो आज भी सुनी, आज पर शुक्ला सप्तमी का पंचमी का दिन सुदर्शन सेठ सिद्ध परमेष्ठी भगवान के सिद्धत्व का दिवस है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया आठों कर्मों को नष्ट करके, और इस उपलक्ष्य में प्रातः काल आप सभी ने पूजन किया और निर्वाण लाडू भी चढ़ाया। ध्यान रखना है बिहार प्रांत में पटना के अंदर गुलजार बाग स्थान है जहां कमल दह का स्थान सुदर्शन सेठ की सिद्ध भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों ने उसके दर्शन भी किए हैं, वहां का दृश्य आप सबने देखा भी है। सेठ सुदर्शन की प्रतिमा और जिन मंदिर में विराजमान भगवंतों की प्रतिमा का अभिषेक भी वहां से दिखा रहे हैं। सेठ सुदर्शन के बारे में आपने जाना कि चंपापुर के सेठ वृषभदास की धर्मपत्नी जिनमती से एक सुभग वाले का जीव जन्म लेता है। उसने पूर्व जन्म में सुभग वाले की पर्याय में मुनिराज से नमो अरिहंत ताणम मंत्र को प्राप्त करके और अपने मन को पवित्र किया था, और उसकी फल स्वरूप उसने सेठानी के गर्भ से जन्म लिया। और आप पहुंच गए हैं कहां तक कि सुदर्शन का विवाह एक मनोरमा नाम की कन्या से हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। पुनः उस नगर के राजा धात्रीवाहन की पत्नी रानी उसके रूप पर मोहित होकर के और उसे फंसाने का षड्यंत्र करती है। अपने महल के अंदर उसे जबरदस्ती उठवा करके और उसके साथ कुछ चेष्टा करती है। पुनः जब सेठ सुदर्शन अपने ब्रह्मचर्य से अपने शील से डिगते नहीं, प्रातः काल वह शोर मचाती है। अपने पति को दिग्भ्रमित करके सुदर्शन सेठ को व्यभिचारी सिद्ध करके उसे सूली की सजा दिलवाती है। लेकिन वन देवता चमत्कार दिखाते हैं और सुदर्शन सेठ के ऊपर तलवार के प्रहार की जगह फूलों की माला डल जाती है और सबको असली बात पता चल जाती है। आगे क्या होता है कि सुदर्शन सेठ जिन मंदिर में जाकर मुनिराज विमल वाहन से जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। सब छोड़े कुटुंब परिवार
अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़े कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, संसार कौन ने देख लिया, उसे त्याग का शुभ संदेश दिया, आत्मिक सुख शास्त्रों में अविनश्वर माना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़ कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, मनोरमा ने बहुत विलाप किया, बोले मुझको क्यों त्याग दिया, घर चलो नाथ ये तो है दुष्ट जमाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़ कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, राजा ने क्षमा याचना की, गलती स्वीकार प्रार्थना की, हे राज श्रेष्ठ तुमने ये नियम क्यों ठाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़ कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, मुनि राज विमल वाहन जी से दीक्षा ली सेठ सुदर्शन ने, घोराती घोर तप कर निज को पहचाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़ कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, यह दृश्य देख राजा ने भी निज राज त्याग दीक्षा ले ली, कर पुत्र को राज तिलक धारा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना, सब छोड़ कुटुंब परिवार। अथिर संसार धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना।
चलो सेठ सुदर्शन सिद्ध परमेश्वर भगवान की
जय।
महानुभाव सेठ सुदर्शन के लिए इस घटना ने त्याग मार्ग के रास्ते खोल दिए और उनकी पत्नी मनोरमा के लिए वह एक ट्रेजडी बनकर के रह गया कि अच्छा भला सुख के दिन चल रहे थे और एक नारी के कारण, उसके षड्यंत्र के कारण सेठ सुदर्शन को संसार की अस्थिरता से अरुचि हो गई, अविनश्वर पद को पाने के लिए वे लालायित हो गए। आप सबको यहाँ जानना है कि सीर धुरंधर सुदर्शन सेठ को राजा ने जब सूली की सजा सुनाई, उसी समय सुदर्शन ने नियम ले लिया था, यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो दीक्षा ग्रहण करूंगा, वापस मैं संसार में नहीं जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने नियम का पालन किया, यानी बच गए तो अपने नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन करके बहुत पत्नी के समझाने पर, विलाप करने पर भी उन्होंने जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा और गुरु संघ के साथ विहार करके, यानी कि विमल वाहन मुनिराज से दीक्षा ले ली और अपने गुरु संघ के साथ विहार करके एक बार पटना के उद्यान में पहुंचकर तपस्या में ध्यान लीन हो गए। चंपापुर से ही वो पटना आ गए। अचानक एक दिन आकाश मार्ग से जाता हुआ एक देव विमान वहां आते आते रुक गया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि उस रानी का जीव यहाँ भी छोड़ता नहीं है। जब राजा के द्वारा त्याग कर दी गई रानी, उसे देश निकाला, दंड दे दिया गया, वह आर्त रौद्र ध्यान से मर करके और व्यंतरनी हो जाती है अगले भाव में जाकर। रानी अभयमती का जीव उस आकाश मार्ग से जाते हुए विमान के अंदर था, जो आर्थ ध्यान से मर करके अवतरणी हुई थी, उसने नीचे सुदर्शन को देखा, पहचान गई वो कि ये वही है जिसने मुझे राज दंड दिलाया। उसने प्रतिशोध का बदला लेना सोच लिया और नीचे उतर पड़ी अपने विमान से। वैवंतरनी उसने सुदर्शन मुनराज पर पुनः उपसर्ग करना शुरू कर दिया। ये है देखो आर्थ रौद्र ध्यान से मरने के परिणाम। पिछले भाव में तो उसने दुख दिया ही, अब इस भाव में भी वैवंतरनी बन करके और सुदर्शन मुनिराज पर उपसर्ग करती है। तब क्या होता है कि जानिए आपकी वैवंतरनी उनके ऊपर कैसे उपसर्ग करती है कि ध्यान से डिग जाए, पुनः इनका संसार बढ़ जाए, नरक तिरंज गति में जाकर ये भी कष्ट को उठाएं। इस भाव से वैवंतरनी ने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। कहती है, काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना, काम बना अब काम बना, मेरा तो अब काम बना। मुझे इसने सताया अब ध्यान लगा, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना,
यानी अब मेरा काम बना है क्योंकि अब ये ध्यान में बैठा है, अब ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं अब इसको दिखाऊंगी, अब इसे मजा चखाऊंगी।
ओले पत्थर बरसा करके मैं उपसर्ग करूंगी, नाच नाच कर इसे रिझा कर ध्यान न करने दूंगी। इसे मार गिराऊं, इसे सबक सिखा, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना, काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना।
मुझे इसने सताया
अब ध्यान लगा, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना।
देखो क्या होता है, जो दुर्जन लोग होते हैं वो कभी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते, वे सकारात्मक सोच से परे होते हैं। और जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उन्हें कोई कितना भी सताए, सन्मार्ग पर चलते हैं, वे किसी दूसरे से बदला लेने का भाव नहीं रखते। जैन धर्म के इस सिद्धांत को आपको जानना पड़ेगा कि जो वास्तविक सम्यक दृष्टि होते हैं वे कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं करते, और जो दुर्जन होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे हमेशा दूसरों से बदला लेने की भावना करते हैं। जैसे आपने भगवान पार्श्वनाथ के भवों को भी सुना है कि कमट ने किस प्रकार भवों में मरुभूति से बदला लिया, लेकिन मरुभूति ने कभी कमट के साथ बदला लेने की भावना नहीं की, इसीलिए वे तो बन गए तीर्थंकर और कमट उन्हें भवों में दुख देता रहा। आखिर जा करके मरुभूति की क्षमा ने, मरुभूति के धैर्य ने कमट को भी, कमट चर जीव जो संवर नाम का ज्योतिषी देव था, जिसने अंतिम बार पार्श्वनाथ को कष्ट देने का निश्चय कर लिया था, उसे भी आखिर उनके चरणों में झुकना पड़ा। यानी क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो दुर्जनों को भी अपने वश में कर लेती है। तो भव्यात्माओं सब मिल करके एक बार बोलेंगे, उपसर्ग सहिष्णु महामुनि श्री सुदर्शन महाराज की जय। वे मुनिराज धैर्य पूर्वक वैवंतरनी के भयंकर उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। तभी पुनः वही वन देवता प्रकट होकर उस देवी को ललकारता है जिसने चंपापुर में सुदर्शन की रक्षा की थी। दोनों का परस्पर में युद्ध होता है और यक्षदेव उस वैवंतरनी को भगा देता है। महापुरुषों की सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वन देवताओं के भी आसन कंपायमान हो जाया करते थे। ये चतुर्थ काल की घटना है, चूंकि भगवान महावीर के तीर्थ काल में ये घटित हुआ, आज भी चाहे वो परोक्ष रूप से महापुरुषों की रक्षा जरूर होती है। तो इधर महामुनि सुदर्शन धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान पर पहुंच जाते, यानी जब उपसर्ग चल रहा है, मुनिराज चिंतन करते हैं बारह भावनाओं का, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोय। और उस वैवंतरनी के प्रति भी कोई बदला लेने की भावना, कोई दुश्मनी की भावना नहीं रखते हैं, केवल अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है और आत्मा के ध्यान में लीन होने के कारण तुरंत वे घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इन कर्मों को नष्ट करते ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुरंत उनकी गंध कुटी कुबेर आकर के बना देते हैं। इस धरती से 20,000 हाथ ऊपर अधर आकाश में वे अपनी गंध कुटी के अंदर केवली सुदर्शन के रूप में विराजमान हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, तीर्थंकर भगवान का तो पूरा समोसरण बनता है, लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं, सिद्ध पद प्राप्त करने वाले असंख्य मुनिराज होते हैं, उन सबकी गंध कुटी बनती है, यानी गंध कुटी जो समोसरण के बीचों बीच में होती है वहां तक बनती है, और उसमें 12 सभाएं बनती हैं, जिनमें भविजन बैठ करके और केवली भगवान का उपदेश श्रवण करते हैं। तो ऐसे सुदर्शन मुनिराज भी गंध कुटी में विराजमान हो जाते हैं। सब मिल करके उन भगवान की वंदना कीजिए। जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, केवल ज्ञानी जय जिनराज, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। सारे उपसर्गों को जीता जीवन संघर्षों में बीता, गंध कुटी प्रभु बन गंध कुटी में विराजे, सेठ सुदर्शन प्रभु बन राजे, चार घातिया कर्म विनाश, चार घातिया कर्म विनाश, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय मुनिराज, जय मुनिराज बोलो जय जय जिनराज। व्यंतरिणी ने भी देखी महिमा, सेठ सुदर्शन की तप महिमा, पश्चाताप किया तब उसने, आई प्रभु का प्रवचन सुनने, आई प्रभु का प्रवचन सुनने, व्यंतरिणी का झुक गया मान, व्यंतरिणी का झुक गया मात, बोलो जय मुनिराज बोलो जय जय भगवान, जय मुनिराज बोलो ज्ञानी मुनिवान। दिव्य ध्वनि अब खिर गई प्रभु की, जिनवर सेठ सुदर्शन जी की, जाति विरोधी जीव परस्पर मैत्री भाव युक्त थे वहाँ पर, नमन चंद नाम मति करे आज, नमन चंद नाम मति करे आज, बोलो जय मुनिराज केवल ज्ञानी मुनिराज, जय मुनिराज केवल ज्ञानी जिनराज।
इस प्रकार से केवल ज्ञानी जिनराज सुदर्शन जी को देख करके, उनके तप की महिमा, उनके केवल ज्ञान की महिमा को देखकर बेंतरनी को भी सम्यक्त हो जाता है। वह भी आकर के गंध कुटी में बैठकर प्रवचन सुनती है। इस प्रकार से भव्यों को दिव्य ध्वनि का पान कराते हुए केवली सुदर्शन एक दिन योग निरोध करके ध्यानस्थ हो गए, और पौष शुक्ला पंचमी आज की ही तिथि आई थी, तब उस तिथि के पवित्र मुहूर्त में अघातिया कर्मों का भी नाश करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। पटना का गुलजार बाग
आज भी सेठ सुदर्शन का निर्वाण धाम सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जबल गुलजार बाग सिद्ध क्षेत्र की, उन सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन भगवान को अनंत शाह नमन करते हुए यही भावना भाना है कि सेठ सुदर्शन के समान हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत शील व्रत के पालन की दृढ़ता प्राप्त हो एवं उपसर्ग भी सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। अंत में सब मिलकर के बोलिएगा, सुदर्शन जिन राज को निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। वाले ने मुनि की सेवा करके सेठ सुदर्शन का पद पाया था, पद पाया था। वहाँ पे अनेकों उपसर्ग सह करके गृह त्याग कर मुनि पद पाया था, मुनि पद पाया था। ज्ञान करके उनको केवल ज्ञान हो गया, नव में गंध कुटिया निर्माण हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। पाँव से सूखे पंचमी को उन्होंने कर्म अघाती नाश किया था, नाश किया था। भव भव भ्रमण समापन करके सीध शिला पर वास किया था, वास किया था। चंद नाम की उन प्रभु का नाम हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया।
सेठ सुदर्शन सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। गुलजार बाग सिद्ध क्षेत्र की जय। सुदर्शन के निर्वाण दिवस की
जय।
इस प्रकार से आज के दिन सुदर्शन सेठ का निर्वाण हुआ और ये चूंकि हमें शास्त्र में मिल गया इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र मानते हुए हमने सेठ सुदर्शन जी की आपको पूजन कराई, उनका निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इस कथानक से आपको सबको ध्यान देना है कि जब एक ग्वाले जैसे जीव ने मुनिराज का थोड़ा सा सत्संग किया, उनकी सेवा करके एक मंत्र के अनुष्ठान के बल पर वह सुदर्शन बन गया और एक उपसर्ग को झेल करके उसने कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो हम सब भी जिन्होंने जैन कुल के अंदर जन्म लिया है, जिन्होंने कर्म सिद्धांत को जाना है, उन हम सबको यही भावना भानी है कि महामंत्र नमोकार के ऊपर अटूट श्रद्धा रखें। यह अपराजित मंत्र है और इसे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसे जपें और सुदर्शन सेठ भगवान सिद्ध परमेष्ठी से यही प्रार्थना करें कि आपके जैसे उपसर्ग को सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए। तो ये कथानक पढ़ना सुनना आप सबके लिए हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। कम से कम उपसर्ग ना सहन कर सकें तो कम से कम किसी को कटु शब्द कहने का भाव ना बनाए और यदि कोई कह रहा है तो सहन करने की हमें क्षमता प्राप्त हो। इस प्रकार से आपने दो दिन के अंदर संक्रांति के पर्व का लाभ उठाया और सुदर्शन सेठ के काव्य कथानक को आप सबने बहुत रुचि से सुना।